أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ دیکھیں کہ levels of ایمان جس کو آپ مراتب ایمان کہہ رہے ہیں اس کو پانے کے لیے یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے آیت پہ نظر رکھیں اپنے سامنے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اپنے اوپر لیجئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگی ہوں ابھی سفر شروع ہوا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کو آپ نے اپنے لیے لینا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کو لوں گی اطاعت کے ساتھ چلتے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جانا ہے اور اطاعت کے لفظ میں تعاون کا لفظ آپ کو کشش دے رہا ہے یعنی آج آپ بالکل باقی سب باریکیوں کو بھول جائیں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں سب ہیں اپنی جگہ اب میں ہوں یاد رکھیے کہ یہ دروازے کھلے رہیں گے صدیقیت اور شہادت کے دروازے کھلے رہیں گے قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک گروہ ضرور حق پہ رہے گا تو وہ کون سا ہوگا جو بالکل اسی سوچ کے ساتھ جیے گا جس کے ساتھ اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب جیے تھے تو وہ میں یوتی اللہ والرسول یہ کی پوائنٹ ہے کسی بھی دروازے کا جب مین ڈور کھل جاتا ہے یا آپ کو اس کی مل جاتی ہے نا تو پھر باقی چابیاں نہ بھی ہونا تو آپ کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں تو اطاعت پہلا قدم اطاعت کا ہے ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے دوسرا قدم آسان کر دیتا ہے پھر ہم دوسرا لیں گے تو اللہ تیسرا بھی آسان کر دے گا تو آج سے اس آیت کو سمجھنے کے بعد یہ نیت کیجئے خود سے وعدہ کیجئے اور اس میں اللہ سے مدد کی دعا کیجئے کہ اللہ خوشی بنا دے جب تک نماز آپ کی خوشی نہیں بنتی جب تک روزہ آپ کی خوشی نہیں بنتا اور وہ بھی نفلی اور اسی طرح زکوٰۃ اگر آپ خوشی سے نہیں دے رہے برے دل سے دے رہے ہیں تو پتہ نہیں وہاں کتنے مائنس پوائنٹ کٹ جاتے ہوں گے دیکھیے جو بھی کام آپ خوشی سے کریں گے نا وہ آپ کا پلس ہوگا اور جس کام کو آپ نگیٹیولی کریں گے نا مارے باندھے بوجھ کوئی بھی وہ چولہا جلانے سے گھر کا اور صفائی کرنے سے لے کے یہاں آ کر قلم اٹھانے اور یہاں کے کام کرنے سے بھی ہر بندے کو جو ذمہ داری دی اس کو خوشی سے کیجیے ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم کام بھی کرتے رہتے ہیں اور باتیں بھی سناتے رہتے ہیں چائے بھی بناتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں یہ چھٹا کپ ہے صبح کا اور ایک منٹ نہیں بیٹھنے دیتے مجھے اور جہاں زیادہ لوگ ہوں گھر میں تو پھر آپ سارا وقت انہی لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اپنی نمازوں کے لیٹ ہونے کا کیا کروں 30 روٹیاں بنائی میں نے کرتی ہیں بہویں بھی ایسی باتیں کرتی ہیں بیٹیاں بھی کرتی ہیں مائیں بھی کرتی ہیں لیکن اپنا مزاج بدلیے آپ کو اگر تھکن ہوتی ہے نا کسی کام میں چاہے میں کھانے کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ کم از کم کھانا تو سارے ہی بناتے ہیں نا قلم کوئی بھی اٹھاتا ہوگا اپنے عمومی درجے پہ آ جائے جو کام کرنا ہے میاں سے بات بھی کرنی ہے بچوں سے اگر بات بھی کرنی ہے خوشی سے کیجیے نہیں تو چھوڑ دیجیے نہیں چھوڑیں گے نا تو چھوٹ جائے گا یہ تو اللہ کا ایک اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا قانون ہے کہ جو کام ہم خوشی سے نہیں کرتے کچھ دن کے بعد پھر وہ بیماری دوسرے مرض میں بدلتی ہے تو خوشی سے نہ کرنے سے ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے انرجی نہیں ملے گی آپ جس کام سے خوش ہوتے ہیں نا یعنی لو یور ورک اور اگر کوئی مرد ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں لو یور جاب جو جتنا کام کرے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ اس کی پوری سٹوری تھی کہ 3 سال کے اندر وہ جگہ جہاں وہ امپلائی بن کے گیا تھا وہاں کو اونر بن گیا جاتے جاتے جب اس کو جاب ملی تو اس نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے مجھے ایک جاب مل گئی ہے تو ظاہر اب میرا عملی سفر شروع ہو رہا ہے تو مجھے نصیحت کیجیے تو استاد نے جو بات کہی تھی نا وہ بالکل آپ کے اس اطاعت والے لفظ میں آ رہی ہے کیونکہ ہم بندوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ اپنے معاملے کو سمجھ جائیں اللہ کے ساتھ سمجھ جائے گا اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم جاب تو کرنے لگے ہو تمہیں پے بھی ملنی ہے تم اللہ کے ساتھ ایک اکاؤنٹ بھی ساتھ ہی کھول لو تو اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے بھائی مجھے وہ بھی بتا دے تو اس نے کہا کہ 5 گھنٹے جاب ہے نا یہ تمہارا کام ہے مثلا اس کا کوئی بھی کام تھا تو تم कोई 1 घंटा अपने इर्द गिर्द वालों से पूछ लो, भाई तुम्हारा कोई काम रहता है तो मैं कर दूं, तुम्हारी को मैं मदद कर दूं, हाउ कैन मई हेल्प यू, ऐसी कोई बात नहीं। लंबी कहानी है लेकिन सिर्फ इन शॉर्ट आपको एक इंसेंटिव देने के लिए कह रही हूँ, तो बस तुम ये कर देना। उसने कहा ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। चला गया, अब अपने इदारे में गया, जो भी उसकी फर्म थी उनकी एक बड़ी, तो वो उन्होंने कहा कि काम शुरू कर दिया। नया बंदा था, उससे सीनियर्स भी थे। ये देखता था कि जो सीनियर्स हैं ना, वो इधर उधर बैठे गप्पे मार रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, उतनी संजीदगी से काम नहीं करते। इसने अपना काम बहुत संजीदगी से किया, जैसे कि शुरू में हर बंदा ही नया काम बड़े शौक से करता है। मज़ा ये कि एंड तक आपका शौक बरकरार रहे और पुराने होकर भी आपके काम नए रंग में ही रहे। तो ये कहता है कि जब मैं फारिग हुआ तो मुझे घर जाना था, तो मुझे अपने उस्ताद की बात याद आ गई कि अल्लाह के साथ एक अकाउंट खोल दो, तो अब उस अकाउंट में भी तो कुछ डालना है। तो ये इसका एक इधर था एक उधर था, एक कोई अकाउंट्स का एडिट करता था ऑडिटर, कोई कोई और कंप्यूटर का काम करता था। इसने उनको कहा कि मैं आपकी को मदद कर दूं, तो पहले तो वो झिझके थोड़ा सा, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन इसने जब थोड़ा कहा तो उन्होंने कहा भाई जा, छुट्टी का टाइम हो गया हमारा, ये काम नहीं हो रहा। इसने वो काम कभी देखा नहीं था। किस्सा मुख्तसर, अगले दिन फिर इसकी रूटीन हो गई। कहता अगले दिन तो वो पहले ही तैयार बैठे थे, उसने पकड़ कर अपनी फाइलें, मुझे कंप्यूटर मेरे, कहता ये मेरा काम रहता है, उसने कहा। कहता फिर मेरी ये रूटीन बन गई, मैं अपना काम भी पूरी दिलजमई से खुशी से करता, तौन जो मैं युतील्ला, और उसके बाद मैं उनकी भी हेल्प करने लग गया। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अपने दाएं वाले का भी सारा काम समझ आ गया, वो बड़े मेन पर्सन थे, सीनियर्स थे, पुराने थे कोई लोग, और बाएं का भी समझ आने लगा। ये सच्चा वाक्य है। वो कहते हैं कि इतने में क्या हुआ कि कोरोना आ गया, तो जो हमारा सुपरिटेंडेंट था ना उस फर्म का, उसको कोरोना हुआ और वो सडनली डेथ हो गई उसकी। जब उसकी डेथ हुई तो कंपनी तैयार नहीं थी, उसको फौरन किसी बंदे को उसकी जगह पे सुपरिटेंडेंट बनाना था, क्योंकि वर्कर तो आपको बहुत से मिल जाएंगे लेकिन जब ऊपर काम कराने वाला ना हो तो क्या। उन्होंने क्या किया कि सबसे मांगा कि आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाएं, ये करें वो करें, और क्या क्या आता है उन्होंने जो फॉर्म दिया, अच्छा वो सीनियर्स ने भी दिया और इसने भी दिया, और इसने अपना भी काम क्लिक किया और वो उनके भी काम क्लिक कर दिए, उन्होंने अपना अपना किया, तो सुपरिटेंडेंट इसको बना दिया गया। भाई तुम्हें तो ये भी आता है तो ये भी आता है, ऐसे ही है ना कि चले इधर जरूरत पड़ी इधर भी काम कर लेंगे, सुपरिटेंडेंट यही होते हैं। तो कहता है कि वो जो दो थे उनको बड़ा गुस्सा आया, हम सीनियर्स थे और तुम ये थे और वो थे, दिस एंड दैट। कहानी सारी लंबी है, कंपनी उस पर एक मुकदमा कर दिया, यानी जाके क्लेम कर दिया। तो 2 साल हो गए हुए थे उस वक्त तक, 2 साल पुराना बंदा आपने आज सुपरिटेंडेंट बना दिया, हम 6-8 साल से बैठे। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो अपने ही सिर्फ काम आता है, इसको और बड़े काम आते हैं। अब 1 साल और गुजर गया, ये एज अ सुपरिटेंडेंट जब काम करने लगा तो पहले तो ये सिर्फ इन दो की हेल्प करता था ना, अब इसके अंडर जितने वर्कर्स थे ना, वो आखिरी घंटा वो उनकी हेल्प करने लग गया। उसका बेकार उसको पूछ क्या हाल है और अखलाक अच्छा रख के, इवन वो जो सफाई करने वाला है उसके साथ भी कभी झाड़ू पकड़ा। इसको उस्ताद की वो बात जाती कि कहने लगा कि जो मेरे 5-6 घंटे हैं या 10 घंटे, उसकी पे तो मेरे बैंक में आती है, तो अगर मैं ये घंटा नहीं लगाऊंगा तो मेरी वो अल्लाह के अकाउंट की पे नहीं मिलेगी मुझे। इसने क्या किया, ये किया। उसके बाद तो एक लंबी कहानी है, उसको 3 साल हो गए। तो वो फर्म, मैं वो जगह नहीं बताना चाहती जहाँ का ये वाकया, और वो क्योंकि फायदा नहीं होता, वो फर्म चलाने वाले गैर मुल्की थे, उन्होंने छोड़ना था उस मुल्क को, और वहाँ वो फर्म थी जो उसका बैंक अकाउंट था, उस बैंक अकाउंट में कैश था। जो मालिक था ना उस फर्म का, उसने सबको बुलाया, जमा किया, फिर उन्होंने कहा कि हम तो इस मुल्क से जा रहे हैं, जिसने लेना ले लो। फैसला किया इसकी स्केल्स और खूबियों की बुनियाद पे, वो पूरी फर्म, उसकी ओनरशिप, उसकी चाबी, उसका कैश अकाउंट, इसको देकर वो मुल्क छोड़कर चले गए। क्या समझ आया? जो इसके आगे उसके कमेंट्स थे ना, वो बड़े खूबसूरत है। उसने कहा कि मुझे अब यकीन आ गया, वो तो लफ्ज़ कुदरत कह रहा था, कुदरत मैं उसको अल्लाह के साथ कहती हूँ। उसने कहा कि अल्लाह बंदे का हक मारता नहीं है, मैंने 3 साल जो एक एक घंटा फ्री काम किया, वो अल्लाह ने मुझे इस फैक्ट्री के मालिक बनाकर पे कर दिया। अल्लाह पे करता है पर कट्ठा बाद में करता है, और भी इसमें बहुत कुछ सीखने वाला था, और यकीन कीजिए ये बात सच है, ये जाया नहीं होती। लव योर जॉब, कोई काम आपको बच्चे पालने का काम दिया अल्लाह ने, पालिए, रोए नहीं, धोए नहीं, गम ना करें। ऐसे कोई होते हैं लोग, आप साल है कि इस वक्त क्लास में है, कोई प्रेग्नेंट हो जाता है परेशान है, बच्चा पैदा हो गया परेशान है, क्या करूं छोड़ दूं, हाय क्लास मेरी क्लास, आप उस बच्चे को नेकी समझ के पालिए, अल्लाह ने आपको इतना प्यारा तोहफा दे दिया है कि एक ब्रांड न्यू पेज के ऊपर आप लिखिए कि आपका उस बच्चे को खुशी के साथ पालना और उसका ख्याल रखना नेकी नहीं है। आप कलम चला रहे हैं, खाने पकते हैं, कुछ चमचा चलाता है, कल आपने दर्स के बाद इतना खाना खाया, अच्छा परसों खाया, 2 दिन खाते हैं ना, ये कहाँ से आता है? इधर अगर ब्रेक होती है तो आप खाते हैं ना, हफ्ते को इधर कितना खाना कैसे आता है? क्या आपका ख्याल है चमचा जिसमें मेहनत भी ज्यादा, उसका तो कोई अजर नहीं है चलाने का, और कलम चलाने और ये मेरे बोलने का तो बड़ा ही अजर है। याद रखिए, जो काम करें अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा करेंगे तो वही। आंख खुशी से देख रही है तौन, कान खुशी से सुन रहे हैं, जुबान खुशी से बोल रही। कभी आज तक पूरी ह्यूमैनिटी में आपको कहीं कोई एक क्वेश्चन आया कि आंख अकड़ गई है जी, सुनने लग गई है कि मैं क्या बात है, मैं देखती हूँ अभी मुझे बोलना अच्छा लगता है और बोलना सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो वह मैं युति अल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल की इतात के दायरे में रहिए, खुशी के साथ अपने कामों को कीजिए। फाउलाए कमाल लजीना अनम अल्लाह अलैहिम, फिर अल्लाह इनाम वालों में आपको करेगा। अनमत अलैहिम का रूहुल कुरान तफसीर में मैंने एक मानी दिया था, आप लोगों ने वो किया हुआ। इनाम वाले लोग कौन होते हैं? नौम, ये देखिए मेरे हाथों को नरम। सूरत अल नाम को अल्लाह नाम क्यों कहते? चुपाए, कैटल्स, तो आहिस्ता चलने वाले, जैसे वो बिल्ली की तरह टू 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 चलते हैं, या गाय भैंस भी होते बहुत भारी हैं लेकिन वो थड़प थड़प नहीं चलते, वो बड़े सुकून से चलते हैं ना। इनाम वाला वो बंदा होता है जिसके लिए कोई काम आसान हो जाए, जिसको अल्लाह ने जो काम दिया है वो उस काम को आसान करे। फिर वो कहता है कि जब मैं मालिक बन गया तो मैं तो सफाई वाले के साथ भी सफाई करता था, मतलब जो नीच काम कोई कह करे, बल्कि उसका इम्तिहान हुआ जब वो ओनर बन गया ना, तो कहता है कि अब जब मैं ओनर बन गया तो एक दफा अकड़ तो आती है ना, तो जब मैं अपना काम करके जाने लगा तो मैंने कहा ओए अल्लाह वाला अकाउंट किधर है, अब इसमें क्या डालू? फिर उसने कहा जब अल्लाह ने मुझे 3 साल में अगर मैं अपने तौर पे लगा रहता तो यहां तक वैसे तो बंदे नहीं पहुंचे और मेरे साथी अभी तक नहीं पहुंचे, मैं नीचे से ऊपर के ऊपर आ गया हूँ। तो याद रखिएगा कई लोग नीचे से ऊपर आ जाते हैं, जो कल हमने जहां पे बात रोकी थी ना उसी बात को समझ लीजिए कि बाज लोग बाद में आते हैं, हजरत हमजा जैसे, हजरत उमर फारूक जैसे, लेकिन कभी कभी उनसे अल्लाह कोई बहुत बड़ा काम लेता है। हम ये नहीं कहते कि दर्जों में वो बड़े हो गए दूसरों से, लेकिन अल्लाह ने उनसे बड़े काम ले लिए। हरम में नमाज पढ़ने की इजाजत मिल गई, और इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ने हजरत उमर फारूक से कितनी दुनिया कॉन्कर करा ली। उहद में हजरत हमजा कबूल हो गए ना, उन्होंने बाद की फतूहात देखी ना कामयाबियां देखी, और ये वाहिद हैं कि जिनकी मुसला करने वाली औरत यानी हजरत हिंदा को अल्लाह के नबी कहते थे मेरे सामने ना आया करो, मुझे अपना चचा याद आ जाता है। जज्बात तो उनके पास भी थे ना। तो क्या पता चला, हजरत ईसा का एक बड़ा प्यारा कॉल है, कितने ही हैं जो बाद में आते हैं लेकिन पहलों से आगे निकल जाते हैं। काम जीतेगा, पंजाबी में कहते हैं कम प्यारा चम नहीं, चम कहते हैं चमड़ी को, यानी गोरी रंगत आला भी बंदा हो ना और अच्छे काम ना करे तो वो नहीं प्यारा लगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अबू बकर के बाद अजीम तरीन इंसान मुतय्यन किया था वो हजरत उमर फारूक थे। पैगामे हिदायत पहुंचने के तकरीबन 6 साल बाद ईमान लाए, अंदाजा करें जरा सा, आपसे पहले 6 सालों में कम अज कम, पता है आपको या मैं बताऊं, 30 से 40 लोग मुसलमान हो चुके थे, यानी हजरत उमर फारूक से पहले और हमजा, ये दोनों करीबुल ज़मानी है। अल्लाह के नबी को ये दोनों खुशखबरियां इकट्ठी मिली थी। कभी कभी बंदा अंदाजा लगा के बैठा होता है शहर में किसी बड़ी अच्छी शख्सियत का रुख देख रहा होता है कि कभी ये दीन पे आ जाए, कभी ये क्लास में आ जाए ना, फिर तो और बड़ों को लेके आएंगी, कभी अल्लाह इनको काम के लिए चुन लेना, फिर ये तो करवा देंगी बड़े औरों से भी काम। तो अल्लाह के नबी ने पता नहीं कितना रास्ता देखा, क्यों अल्लाह के नबी कह रहे थे अल्लाह उमर बिन खिताब या उमर बिन हिशाम से इस्लाम को फतह दे, मदद दे। तो वो जो 30 40 थे ना वो पीछे रह गए, उमर आगे आगे, क्यों? बड़ा बड़ा लिख लीजिए फ़ाल, कल भी बोला था आज के इस वाक्य के साथ भी बोलती, फ़ालियत जीती है। फ़ाल कौन होता है? पंजाबी में कहते हैं कामा, काम करन वाला, बातें नहीं जीती। आपको किसी के दिल में उतरना है ना, आप उसकी जरूरत बन जाएं, आपको किसी के लिए लाजिमी बनना है ना कि मेरे बगैर इसका गुजारा ना हो, आप उसके हर मर्ज की दवा बन जाएं। कई बीवियां बड़ी मर्ज की दुआएं होती हैं अपने मर्दों की, उन गरीबों को यह तक नहीं पता कि जुराबें किधर हैं, वो पानी भी नहीं लेते, वो देती बेगम है, बेगम इज्जत कर रही है लेकिन असल में वो फाल बन रही है। वो फिर मियाँ उसके बगैर खाएगा भी नहीं, वो उसके बगैर अलमारियां भी नहीं खराब करेगा, इधर से कपड़े निकाल, मर्दों को निकालने आते हैं कपड़े, वो एक निकालेंगे चार नीचे फेंकाएंगे, इल्ला माशाल्लाह। फाल बनिए, किसी की जरूरत बन जाइए। और याद रखिएगा कि जो जितना फाल होगा, जो अमल में जितना कवी होगा, वो उतना चाको चौबंद होगा, वो थकेगा नहीं। सब कहेंगे हम थके, घर बैठे थके रहते हैं, वो नहीं थकता। वो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी गाड़ी में बैठेगा, मुराद ये कि उसके 10 प्रोजेक्ट भी होंगे ना, वो थकेगा नहीं। वो रात को बिस्तर पे आने को भी एक प्रोजेक्ट ही समझेगा कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको करने वाला हूँ। तो आप याद रखिए कि अपने आप को एक्टिव कीजिए, जिंदगी बहुत छोटी है, करने के काम होते हैं। अच्छा, जब लोग एक्टिव कहते हैं ना, तो लोग कहते हैं सारा कुछ करने लग जाओ, पीछे हो जाओ, मैं आ गई हूँ, मैंने फाल बनना है, मैं लूंगी, मुझसे आज मैंने सुन लिया दूसरों के भी काम करने, अब अपना छोड़ के जाके आप कंटीन वालों को चमचा चलाएं, और आप जाकर बच्चों में कुछ थोड़े खवाफ रोले, और आप कहते हैं ये मैं नेकियों के अकाउंट बना रही हूँ। कोई पैसे बखेरता? पैसे तो आपके एक अकाउंट में पड़े हैं बैंक में, तो क्या आपने अपने चुनिया ठनिया रुपये डॉलर पाउंड जो वो सारे इधर उधर फैलाए हुए? बेवकूफ़ी है ये। लेकिन ये शुरू में होती है, और ये उन लोगों से होती है जो शोहदा टाइप के मिजाज के होते हैं, बहुत एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं। वो कहते हैं मैं इधर भी हाथ डालूंगी, मैं इसको भी कर दूंगी, मैं जाके समसाई की सब्जी बनाती हूँ, मैं उसका चावल कर रहती हूँ। पता चला घर आए तो अपने बच्चे और मियाँ गुस्से से लाल भलक हुए पड़े। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, स्टेबिलिटी नहीं आती। कौन रखे आपको? आप कहते हैं मैं आई काम किया चली गई, भी हमें नहीं चाहिए ऐसा काम। आप घर में ऐसे, आप घर में आज तक क्यों टिकी हैं 20-30 साल से? बर्दाश्त किया हुआ है ना आपको उन्होंने, क्योंकि टिकी हुई है, एक ही की बीवी हैं आप। फितरत का सुलह, देखिए इस जुमले को भी आज समझ लें। बास लोग इसको बैत का नाम देते हैं कि बैत कर ले हमारी, फिर आप हटेंगे नहीं। बास प्लज का नाम देते हैं, बास इस चीज़ को नाम दे देते हैं, रुकन बन जाइए, पेपर साइन कर दें। बास लोग कह देते हैं कि आपकी शर्त है, जैसे आप अमेरिकन सदर हैं, अगर बनना चाहते हैं, कोई कोई बनता है तो वो अमेरिका का ही होगा, है ना? यानी हर एक का कोई नाम है। मैं उसको एक चीज में नाम में ले आती हूँ कि आपकी सेल्फ कमिटमेंट इतनी हो जाए कि उधर ही इतने काम है आपको सारी दुनिया में जाकर काम करके, और ऐसे बंदे का भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वो किसी ना किसी वक्त पे गायब जरूर होगा ना। हाँ, वो बंदी है, वो सारा वक्त सुबह से शाम तक हमें इधर ही दिखती है। पकड़ लो इसको सुपरिटेंडेंट बना दो, क्योंकि इसको सारी चीजें स्कूल की पता है, वो जीते कैंड पे। आप बहुत कुछ करने के नाम पर, बहुत कुछ करके नहीं जीतेंगे, लेकिन इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, पीछे बात की थी ना, सालेहीन के दर्जे पे इस्तक़ामत से जमे रहिए, आप सिद्दीक बन जाएंगे, और आपसे अल्लाह शहादत का काम भी ले लेगा। तो लिहाजा आयत के सामने नजर रखिए कि वमन युति अल्लाह व रसूल फ़ौलाइका मअ अल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम। अब देखिए तरतीब में, मिनन नबीयीन पहले है, फिर सिद्दीकीन, फिर शुहदा, फिर सालेहीन, व हसुना उलाइका रफीका। जरा सा इसको हम स्लाइड्स के साथ गो थ्रू करते हैं, ताकि आपको पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी का जो यहाँ अल्लाह ताला का बताया हुआ खूबसूरत रब्त है वो भी समझ आ जाए। जितना ज्यादा कोई शख्स इस आयत में, ये जो आखिरी जुमला है ना, इसको देख के फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ। उलाइका हसुना रफीका, यानी ये वो लोग हैं जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे, और इन वो इन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया, अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालेहीन। इन चार कैटेगरीज का नाम लेकर फरमाया, और क्या ही अच्छी है इन लोगों की रिफाकत, दैट इज द बेस्ट कंपनी एनी वन कैन हैव। जो भी कोई मानवी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर कारबंद रहेगा, उसे जरूर अच्छी कंपनी मिलेगी, अच्छी माइयत मिलेगी, जिन पर अल्लाह का इनाम होगा। अल्लाह चुन लेता है, ये असल में ना चुने हुए लोग हैं। अल्लाह फिर बाकियों को बैठाकर सिर्फ खाने पानी और आपकी सिर्फ जाती शॉपिंग और कपड़े धोने और खाने पीने तक की नेकियों पर आएगा, वो भी नेकियां अगर हद के साथ है जो भी है, लेकिन अल्लाह अपने कामों के लिए उनको चुनता है, उनको अच्छी कंपनी देता है, उनका एक बड़ा प्यारा सर्कल बन जाता है जो हकीकत में अल्लाह ताला के साथ अपना मामला इस तरह का बना लेते हैं कि जिसके बाद वो वाकई अल्लाह के काम के बन जाते हैं। हजरत आयशा की एक हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने अपने लिए जो बात पसंद की थी, बुखारी की है, 4586 रिवीजन है आपकी। कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना था, मरजुल मौत में क्या कह रहे थे कि पहले आपने बताया था कि जब कोई नबी मरजुल मौत में होता है, बीमार होता है, तो उसको इख्तियार दिया जाता है, चॉइस दी जाती है कि तुम दुनिया में रहना चाहो तो और रह लो, और अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो। जब नबी सल्लम की मरजुल मौत में आवाज़ गले में फंसने लगी, तो मैंने सुना आप फरमा रहे थे, मा अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबीय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो मैं समझ गई कि आपको भी अब इस वक्त इख्तियार दिया गया है, और आप उस इख्तियार को कबूल करके क्या कह रहे थे, अल्लाहुम्मा बिर रफीकिल आला। ज़रा से इस लफ्ज़, आखिरी लफ्ज़ है ना जिस आयत में रफ़ीक, हसुना उलाइका रफ़ीका, उस लफ्ज़ को नबी सल्लम के इस जुमले से जोड़िए, अल्लाहुम्मा बिर रफीकिल आला। कभी भी ये जुमला नहीं समझ आता पूरा। आमतौर पर उर्दू तर्जुमों में इसका जुमला क्या कर दिया जाता था, या मैंने भी जहाँ भी पढ़ा सुना, कि अल्लाह तेरा साथ चाहिए। समझ ही नहीं आती थी कि यहाँ क्या है। आज इस आयत के साथ इसको समझकर आपको भी समझ आ गई कि ये बिर रफीक लाला उस इख्तियार को बेहतरीन तरीके से चूज करवाने का नाम है। कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये चॉइस दे रहे हैं, और वो उस चॉइस में से किन का साथ मांग रहे हैं, बिर रफीक लाला। सवाल पैदा होता है कि कौन होगा रफीक लाला इधर, ये चारों कैटेगरीज समझिएगा। अल्लाह के नबी तो नबुवत से भी ऊपर, आप कह लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिसालत के मर्तबे पे थे। आप दोनों में से जिसको भी कौन सा दर्जा बना लें, नबुवत को बड़ा कर लें, रिसालत को बना लें, कोई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नबी सल्लम ने उस वक्त उस रिफाकत को, इस कंपनी को कबूल किया, पसंद किया, तो ये कितना आला मुकाम होगा, ये कितनी बड़ी बात होगी कि अल्लाह सुबहान तआला किसी को मौत के वक्त भी अच्छे लोगों का साथ नसीब करे। इसलिए अपनी दुआओं में एक दुआ रखा करें कि अल्लाह आज तो कोई अच्छी नेकी है, आज तो तू हमसे कुछ करवा ही रहा, ऐ मालिक इसके बाद भी करवाना, मौत तक करा। देखिए हमें नहीं पता कि इस वक्त हम कोई नेकी कर रहे हैं तो मौत किस पे आएगी। इसका नाम है हुस्ने खात्मा। ये है वो चीज़ जिसके लिए हजरत यूसुफ ने नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे तू क्या करना, ऐ मेरे मालिक मेरा खात्मा अच्छा करना, मुझे बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पर लेके जाना। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में लेंगे, अल्लाह आपसे काम लेगा। अब ज़रा से इन टर्म्स को रिवाइज़ करते हैं। पहली चीज़ है नबीजीन, बात हुई थी थोड़ी सी। नबवा का लफ्ज़ बुलंदी के लिए आता है। नबा सूरत नबा पढ़ते हैं, अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अजीम, तो वो कौन सा होगा, नबी कौन होता है जो बुलंदी की तरफ बुलाता है, या फिर नबी वो होता है जो बुलंद खबरें देता है। छोटी छोटी न्यूज़ नहीं होती, उसके पास आखरत की खबरें भी होती हैं, और इस तरीके से नबी जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि जिनको अगर आपने कबूल कर लिया तो अल्लाह ताला दुनिया में आपको भी बुलंदियां अता करेगा। रिवायत से जो बात पता चलती है, 1 लाख से ज़ायद नबी आए। इंसानियत का सबसे बेहतरीन गिरोह अम्बिया होते हैं, और नबूवत का मनसब है ये अल्लाह की अता, यानी वह भी है कस्बी नहीं है। सूरत अलनाम की आयत 84 देख लीजिए, वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदईना व नूहन हदईना मिन कब व मिन जुर्रियती ही दाऊद व सुलेमान व अयूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कजालिक नजिल मुहसिनीन। आप देखिए कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इनको इसहाक और याकूब बख्शे, किन को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और इन सब को हिदायत दी, और पहले नूह को भी हिदायत दी थी, और इनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी, और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। दुआ करें कि जैसे इब्राहिम की नस्ल से नबूवत चली, एला हमारी नस्लों से सिद्दीकियत चले, शहादत हक चले, हमारे नस्लों से सालेहियत की नस्लें चलें। अल्लाह हमारी नस्लों को गुमराह ना करना, अल्लाह हमारी नस्लों को दीन में, इस्लाम में, ईमान में हमसे आगे करना। और यही दुआएं सब सुनने वालों के लिए हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने किसी भी मुश्किल में डाला, या अल्लाह उन सबको उसे निकाल दे। आज लोग औलादों की वजह से परेशान हैं, दुखी हैं, गमजदा हैं, और इसी तरह से अपने लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमारी औलादों की औलादें, वो नस्लें जब हम नहीं होंगे दुनिया में, अल्लाह उनको भी ईमान पे रखना, क्योंकि अहादीस से जो बातें मिल रही हैं और जो हालात और वाकयात दिखा रहे हैं, तो सख्त वक्त आने वाला है और आ भी चुका है। बस अल्लाह ताला हमारी नस्लों को इस्लाम दे दे। आम बात हो गई, कानों में कोई माँ बाप बात करें, पहले दौर में होता था लड़के ने कोई लड़की पसंद कर ली है, यानी लोग दुख सुख करते हैं ना माँ बाप का, अच्छा बात करनी, ज़रा कुछ सवाल पूछना क्या है। 90% पहले ये होता था कि लड़के ने कोई गोरी पसंद कर ली है, अब ये सब खत्म हो गया, बिलीव मी। अब ये क्यों कहते हैं, मैं नहीं अल्लाह को मानता, मैं नहीं इस्लाम को मानता, घर छोड़ गया है वो, या होमोसेक्सुअल बन गया या कुछ हो गया। यानी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के माँ बाप के दिलों पे ये फफोले हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा। तो इसलिए दुआएं मांगनी है, इसकी ज़रूरत है। फिर आगे देखिए सूरत अलनाम की आयत 124 में रिसालत का जिक्र है। वैजा जात हम आयतुन कालू लन्नो मिना हत्ता नोता मिसलमा ऊती रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह ही अल्लाह आलमो है सो यह जलूरी सालता। इसको हाईलाइट कर लें, अल्लाह खूब जानता है कि मैंने कहाँ से अपना पैगाम पहुँचवाना है। अल्लाह नहीं किसी का रंग देखता, नहीं शक्ल देखता, नहीं उसकी ज़ात देखता। अल्लाह जब किसी से काम लेना चाहता है तो अल्लाह ताला काम ले लेता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को बंदा मशवरे नहीं दे सकता। फिर अबू दाऊद की रिवायत है 4668, रावी है अबू सईद अल खुदरी, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबियों को एक दूसरे पर फजीलत ना दो। अल्लाह ने खुद कह दिया, तिल का रसुलू कद फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह दे सकता है, आप और मैं ये तकाबल नहीं कर सकते। जैसे कि उस आयत की वाक़ है ना कि हज़रत मूसा बेहतर हैं कि अल्लाह के नबी बेहतर है, इस पे झगड़ा शुरू हो गया था। ठीक है, अब ज़रा सा सेकेंड टर्म को देखिए, सिद्दीकीन, स्वाद दाल काफ से, सिद्दीक की जमा सिद्दीकीन, कमाल ईमानों और कमाल इताअत का मजमुआ। ईमान में भी पक्का दी बेस्ट, और बात मानने में भी। हमारे पास अमूमन हालात जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कभी हम अकायद के एतबार से अच्छे होते हैं लेकिन हमारे मामलात बिगड़ जाते हैं, कभी इल्म बहुत ले लेते हैं अमल नहीं करते। दोनों बातें, जैसे इस वक्त आप ये कह लें कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों में अच्छे स्टूडेंट, हक की फौरन गवाही देने वाला, दिली डली नहीं, तरबस नहीं है। सूरह हदीद की आयत याद आ रही है कि पुल सरात पे जाकर कुछ लोगों को ये जुमले सुनने पड़ेंगे कि भी तुम्हारे पास भी तो आई थी ना बातें, तुम तरबुस में ही रहे, जरा और सोच लो, जरा और सोच लो। हक बात की गवाही सामने बड़ी फौरन दे दी, और बातिल के खिलाफ डट जाने वाला। ये बड़े बड़े लफ्ज अपने दिल पे लिख लें, ईमान में कमाल पैदा करना है, इतात में कमाल पैदा करना है, हक की फौरन गवाही देनी जब कोई नेकी का मौका है। लब्बैक, सोचे तो गए, सोची प्या ते बंदा गया, अल्लाह की बात सुनकर फौरन चल पड़े, अल्लाह के रास्ते की कोई कॉल आ जाए बिस्मिल्लाह, बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ जाए बिस्मिल्लाह, कोई छोटी सी चीज़ आ जाए बिस्मिल्लाह, और बातिल के खिलाफ डट जाइए। आज क्या लोगों को इन सिद्दीकीन की ज़रूरत है, इन मुआशरों को, इन सोसाइटीज़ को ज़रूरत है बातिल के खिलाफ डटने वालों की। चारों तरफ तो फसाद फैल गया। और सिद्दीकियत का तस्करा सूरह ज़ुमर की आयत 33 में आता है, पहली आयत है ये पारे की, वल्लसी जा बिस्सिद्क की वसद्दक बिही उलाइक हुमुल मुत्तकून। और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने तस्दीक की, वही लोग मुत्तकी हैं। दो काम कीजिए, देखिए वल्लसी जा बिस्सिद्क कौन है इस आयत में, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर। और सच लेकर आने वाले की तस्दीक इसने की, सद्दका भी, अबू बकर सिद्दीक, और उसके बाद फिर हर दौर का सिद्दीक। यानी ये आयत हज़रत अबू बकर की शान में उन आयतों में से है एक, जो कि टेक्स्ट के डायरेक्ट, जिसको आप कहते हैं कि तावील ख़ास के अतबार से अबू बकर पर पड़ती हैं, सद्दका भी। आज तो बड़ा आसान है ये कहना अबू बकर की खूबी, इतनी मोटी किताबें अबू बकर पे, वो हालात और वो वक्त जहन में लाकर सोचें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। और अपने आप से पूछें कि मैं सिद्दीक की जगह होती तो मैं करती, अल्लाह के नबी का साथ देती। तो नबूवत के बाद सिद्दीकियत का मुकाम है। उम्मते मुहम्मदिया में इस मुकाम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मुमताज़ हैं। साहबे कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के समझने और इसकी पैरवी करने में तमाम उम्मत में सबसे कामिल है। तो अबू बकर से ऊपर मुकाम किसी का नहीं। रिवायत भी ले लीजिए, सिलसिला सहीहा की रिवायत है 3343। अब्दुल्ला बिन बसर से रिवायत है, आपने फरमाया यानी अल्लाह के नबी ने, जिसने मुझे देखा उसके लिए खुशखबरी है, जिसने मेरे सहाबी को देखा उसके लिए खुशखबरी है, और जिसने मेरे सहाबी को देखने के वाले यानी ताबई को देखा और मुझ पर ईमान लाया उसके लिए भी खुशखबरी है। यानी खैर कर्न करनी सुम अल्लज़ीन यलूनहुम सुम अल्लज़ीन यलूनहुम सुम अल्लज़ीन यलूनहुम, जो उनको मिले। देखिए मैग्नेट होते हैं ना, तो उसके साथ लोहा रखते थे, वो भी मैग्नेट बन जाता है, फिर और थोड़ा लोहा रखेंगे वो जिधर तक जाएगा ना मैग्नेट बन जाएगा। हिदायत के सोर्स से जुड़ने वाले दूसरों के लिए मैग्नेट बन जाते हैं। और आप ये सिरा छोड़िए तो आपको अपने ईमान के लाले पड़ जाएंगे, सच है कि झूठ। ये जो आप पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, क्या ये चीज़ आपको खुद नहीं जमा रही होती? कई दफ़ा हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वो हमारा अपना फ़ायदा हो रहा होता है, और ये गवाहियाँ हमें मिलती हैं। लोग कहते हैं नहीं अभी मैंने और पढ़ना है, मैंने सबीलुल जन्नत दोबारा करना है, नहीं नहीं मेरा तो नूरुल्ला नूर पूरा नहीं। आप जो ही उनको जिम्मेदारी देते हैं और आपने एज अ क्लास एडमिन बैठना है, तो आपने तो एक एक लफ्ज़ ना सिर्फ सुनना बल्कि लिखना, क्योंकि आपने रिकैप कराने हैं, आपने असाइनमेंट्स देने हैं। तो ये नेचुरल सा सफ़र है। इस सारे सफ़र को तय करने के लिए बस जुड़ा रहना लाजमी है। वही बात है कि कोई बैत नहीं है इधर, कोई प्लेज नहीं है इधर, कोई फॉर्म फिल नहीं किया। वह अपने दिलों के फॉर्म होते हैं। जब आपके अपने ही घर में कितने काम है, लेकिन आपके घर में सफाई का भी काम है, खाना पकाने का भी काम है, कपड़े धोने का भी है, बच्चों को देखने का है, तो क्या आप ये चारों काम बांट के चार मुख्तलिफ घरों में करना पसंद करेंगी? वह एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है दिलाता है हजार सजदों से आदमी को निजात, यही तो ही तो दीन का काम ही क्या है। एक लीडरशिप के अंदर आ जाओ। घर भी तब तक ही बसते हैं जब तक एक शौहर के साथ हम लोग होते हैं।